नहमिया अध्याय आठ। आइए हम नहमिया अध्याय आठ को अपने पवित्र शास्त्र में खोलें। इसराइलियों की पहली वापसी के 90 वर्षों बाद नहमिया यरूशलेम को लौटता है। बाबुल की गुलामी के आरंभ से अब तक 160 वर्ष हो गए थे। बाबुल को मादी फारसी सेना ने हरा दिया और अर्थशत्र अब राजा हो गया। नहमिया उसका पियाऊ था। नहमिया की उदासी राजा के सामने साधारण नहीं थी, इसलिए राजा ने प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, ये मेरी दशा यरूशलेम की दुर्दशा सुनकर है। शहर की शहरपना टूटी हुई है, दरवाजे आग से जले हुए और लोग निराश हैं। इस पर राजा अर्थशत्र ने 445 ईसा पूर्व ये आज्ञा निकाली कि नहमिया शहर को फिर बसाए और यरूशलेम को पुनर्स्थापित करे। उसे अधिपति बनाकर यरूशलेम भेजा गया और उसने लोगों को शहरपना बनाने के लिए उत्साहित किया। सारी रुकावटों के बावजूद जो बाहरी और अंदरूनी थी, उन्होंने शहरपना के दीवारों को 52 दिनों में पूरा कर दिखाया। जबकि संबलत और तोबिया ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और छापा मार हमले किए, तो भी उन्होंने 52 दिनों में ये बड़ा काम पूरा कर दिया और फिर एक बड़ा उत्सव मनाया गया दीवारों के पूरा होने पर। अब हम अध्याय आठ में पढ़ते हैं। अध्याय आठ पद एक से लेकर छह तक। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इसराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एज्रा याजक सातवें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया और वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एज्रा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दहनी अलंग मतिया शोमा अनन्या ऊरिया हिल्किया और मेसाया और बाई अलंग पदिया मिशाइल मिल्किया हाशुम हशबदना जकरिया और मशूलाम अन्य शास्त्री खड़े हुए। तब एज्रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों को देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर प्रभु को दंडवत किया। अब हम एक सुंदर दृश्य को देखते हैं। सब लोग जल फाटक के पास इकट्ठे हुए हैं। एज्रा एक लकड़ी के छोटे से मंच पर जो उसी के लिए बनाया गया है और उस पर खड़ा होकर लोगों के लिए अर्थात स्त्री और पुरुषों के लिए पढ़ता है। भोर से दोपहर तक वो परमेश्वर की व्यवस्था पढ़ता है और सब कान लगाकर खड़े रहें। दोपहर तक शायद 5-6 घंटे वो परमेश्वर का वचन सुनते रहे। उसने परमेश्वर को धन्य कहा। सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा तथा यहोवा को दंडवत किया। आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। ये एज्रा द्वारा लाई गई आशीषों का स्वीकरण था। ऐसा ही हो ऐसा ही हो। उन्होंने सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर प्रभु को दंडवत किया। यहूदी परमेश्वर की आराधना में दिखावा करने वाले हैं। पश्चिमी दीवार के पास जाकर उनको देखना अति रोचक होता है। मैं नहीं जानता कि वो तरीका देखा देखी वाली है या उनके मन से आता है, लेकिन जब वे प्रार्थना की पुस्तक पढ़ते हैं तब वे बार बार झुकते हैं। शुक्रवार की शाम अर्थात सबत के दिन के आरंभ में जवान पुरुष पुराने यरूशलेम के ऊपरी भाग में स्थित अपने स्कूल से नीचे आते हैं। वे चार चार की पंक्ति में होते हैं और एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हुए होते हैं। वे सबत का स्वागत करते हैं और परमेश्वर की स्तुति में गाने गाते हैं। उनके कदम कुछ ऐसे होते हैं जैसे नाच के। वे पश्चिम दीवार के पास आते हैं, वो स्थान पत्रों का है। अब वे गाते गाते नाचते लगते हैं। वे गोला बनाकर तरह तरह का नाच करते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते जाते हैं। और जब वे अपनी आराधना कर लेते हैं तब वे हाथों में हाथ डाले नाचते हुए लौट जाते हैं। ये मोह लेने वाला दृश्य होता है जिसे हम यरूशलेम में रहते हुए सदा देखना चाहेंगे। सबत के दिन की शुरुआत शुक्रवार की शाम को ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लोग, और जैसे मैंने कहा कि उनमें से कुछ लोग भाव प्रदर्शन में अति कर देते हैं, परंतु उन्हें देखना सदा मन भावन होता है। यदि आप आंखें बंद करके कल्पना करें कि एज्रा परमेश्वर की व्यवस्था से पढ़कर उन्हें सुना रहा है और दोपहर के समय वो परमेश्वर को धन्य कहता है तथा लोग हाथ उठाकर कहते हैं आमीन आमीन और झुककर भूमि पर दंडवत कर रहे हैं, तो ये कैसा आकर्षक दृश्य होगा। वे परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पण कर रहे हैं। वे स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके जीवन को नियंत्रण करने वाला सिद्धांत है। हम देखते हैं जब वो व्यवस्था पढ़ता है तब वहां कुछ लेव्य भी थे। अध्याय 8 पद 7 और 8। वे लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। यहां एक मुख्य बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर परमेश्वर का वचन पढ़ा और अर्थ समझा दिया। उन्होंने धर्मशास्त्र की व्याख्या की। मैं सोचता हूं कि आज कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। व्याख्यात्मक उपदेश की आज कलीसियाओं को बड़ी आवश्यकता है, लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है कि वचन पढ़ा जाना और समझाया जाना आज बहुत ही कम पाया जाता है। आप नहीं जानते कि संसार में हजारों लोग हैं जो स्थान पाने के लिए पैसा देने को तैयार है। हमारे पास लगभग 100 लोगों से निवेदन आए हैं। उन्होंने लिखा, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें एक पादरी कलवरी कलीसिया से भेजे। हमने अपना दशमांश जमा करना आरंभ कर दिया है इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमें एक पादरी देगा। हमने पूरे शहर में ढूंढा जहां परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाया जाता है जैसा कलवरी प्रार्थना घर में। वे रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और उन्होंने हमसे कार्यक्रमों के टेप भी मंगवाए। इनमें 100 से भी अधिक ऐसे लोग हैं जो टेप पर हमारे उपदेश सुनकर कहते हैं हमारा पादरी चक सीमित है। सच तो यह है कि उन्हें ऐसा आराधना स्थल नहीं मिल रहा है जहां वे इकट्ठे होकर सीख सके, अर्थात वचन की सच्ची शिक्षा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर की शिक्षा देने वाली कलीसियां खोज पाना कठिन है जहां व्यर्थ का दिखावा या भावना प्रदर्शन ना हो परंतु केवल वचन की सरल शिक्षा। नया नियम की कलीसिया के बारे में लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। वे उनसे संगति रखने, प्रभु भोज की रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। लेकिन आज वैसी एक कलीसिया पाना कठिन है। यही कारण है कि हमें ऐसे पत्र मिलते हैं। हमें कुछ लोगों से फोन आया, वे लगभग 100 से अधिक लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें कलवरी कलीसिया से पास्टर भेजे, क्योंकि वे इकट्ठे होकर टेप सुनते हैं। वे प्रति सप्ताह इकट्ठे होते हैं और हमारे टेप सुनते हैं। उनकी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनमें एक पास्टर एवं शिक्षक भेजे जो उनकी अगुवाई करे। पूरे देश में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जो परमेश्वर के वचन के अभिलाषी हैं। वे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु उनके आसपास की कलीसियाओं में उन्हें वो शिक्षा नहीं मिलती। ये समझाने में मुझे कठिनाई होती है, क्योंकि जहां तक मैं सोचता हूं कि कलीसिया का मुख्य उद्देश्य यही है, परमेश्वर का वचन सीखे और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे समझना। आपको दर्शन शास्त्र या मानवीय दर्शन सिखाने की यहां आवश्यकता नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में ये सीख सकते हैं। आपको जो सिखाना है वो ये है कि परमेश्वर जीवन के बारे में और जीवन के अर्थ के बारे में, जीवन के उद्देश्य और जीवित रहने के बारे में तथा जीवन के मार्ग के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। यही वे लोग कर रहे थे। उन्होंने वचन को स्पष्ट पढ़ा और लेवियों ने उन्हें अर्थ समझाया, अर्थात धर्मशास्त्र का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने व्यवस्था को पढ़ा और उसकी व्याख्या की, अध्याय 8 पद 9 और 10। तब नहमिया जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप मत करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बैना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जब वे वचन पढ़ रहे थे और वचन समझाया जा रहा था, तब लोगों को ये बोध हुआ कि परमेश्वर के व्यवस्था पालन में उनसे कैसे चूक हो गई। परमेश्वर के वचन ने उनके मन में एक अपराध बोध उत्पन्न किया। परमेश्वर के सम्मुख वे रोने लगे, क्योंकि धर्मशास्त्र को सुनकर वे जान गए थे कि उनसे कैसी भारी भूल हो गई थी। परमेश्वर की आत्मा को लोगों के मन में काम करता देखना मन को हर लेने वाला अनुभव होता है। ये देखना कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है और प्राण और आत्मा को भेद देता है, बड़ा ही मनमोहक अनुभव होता है। वचन ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था, ऐसा बोध कि लोग अपनी भूल को पहचान ले और आंखें भर आए। परंतु उन्होंने कहा, मत रो, विलाप मत करो, आज आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नया कर रहे हैं। ये परमेश्वर के निकट आ जाने का समय है, ये पुनरुद्धार का समय है, इसलिए जाओ, खाओ और पियो, और जिनके घर में खाना नहीं पका है उन्हें भी दो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु में अवस्थित होना कैसा आनंद है, उस आनंद में कैसा बल है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आपका जीवन आनंद से भरपूर हो। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन आनंद से भरा हुआ हो। पत्रस ने कहा, पहला पत्रस 1:8, आनंदित और मग्न होते जाओ, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:24, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और वो आनंद की भरपूरी की बात सदा कहता है। ये सोचना कि परमेश्वर हम पर बोझ डालना चाहता है अर्थात जीवन की चक्की में पीसते रहें एक गलत धारणा है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जीवन की कठोरता से पार लगाने में मेरी सहायता कर, मुझे सहन शक्ति दे। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद मनाएं। उसका आदेश है कि आप आनंद मनाएं। प्रभु का आनंद आपका बल होगा। यीशु की संगति में रहना कैसे आनंददायक है। अध्याय 8 पद 11 और 12। यूं लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया कि चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। आपके मन आनंद से कैसे भर जाना चाहिए जब आप ये वचन सुनते हैं और समझते हैं। नए नियम में वर्णन है कि कहां कहां सुसमाचार सुनाया गया और लिखा है। प्रेरितों के काम 8:8। नगर में आनंद ही आनंद हो गया। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप ऐसे हुआ था। परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करने का परिणाम सदा ही आनंद होता है। तब सब लोग खाने पीने बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। अध्याय 8:13। और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। पहले दिन सार्वजनिक सभा थी। सब स्त्री पुरुष और जो समझ रखते थे वहां इकट्ठे हुए कि परमेश्वर की व्यवस्था का पढ़ा जाना और समझाया जाना सुने। दूसरे दिन मुख्य मुख्य पुरुष याजक और लेवीय लोग जमा हुए ताकि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था सिखाई जाए। अध्याय 8:14-17। और उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा से ये आज्ञा दिलाई थी कि इसराइली सातवें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें और अपने सब नगरों और यरूशलेम में ये सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जलपाई तेल वृक्ष मेहंदी खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ जैसा कि लिखा है। सो अब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में ए प्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंदवाई से छूटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उसमें टिके। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था और उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। ये पर्व झोपड़ियों का पर्व कहलाता है जो यहूदी कैलेंडर के अनुसार सातवें महीने में आता है। मूसा की व्यवस्था में आज्ञा दी गई थी कि इस पर्व के समय उन्हें अपने घर से निकलकर एक सप्ताह के लिए बाहर झोपड़ियों में रहना होगा। जब वे ये झोपड़ियां बनाते थे तो पत्तों और खजूर की टहनियों से बनाई जाने वाली दीवारों और छतों में उन्हें जगह छोड़ना होती थी जिससे कि दीवार से हवा अंदर आ सके और रात को लेटते समय वे छत में छोड़ी गई जगह से सितारे देख सके। झोपड़ियों के पर्व का उद्देश्य था उन्हें याद दिलाना कि परमेश्वर ने 40 वर्षों तक जंगल में उनके पितरों को सुरक्षित रखा, इसलिए उन्हें झोपड़ियां बनानी होती थी। तुम्हारे पूर्वज 40 वर्ष तक जंगल में झोपड़ियां बनाकर रहते थे, अब तुम उस देश में निवास करते हो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। आज तुम पक्के मकानों में रहते हो, इसलिए अपने पूर्वजों के कठिन समय को स्मरण करने के लिए ये झोपड़ियां बनानी होगी। घर से बाहर उनमें एक सप्ताह तक रहो। ये उन्हें याद दिलाता था कि उनके पूर्वज जब जंगल में 40 वर्ष तक भटक रहे थे, परमेश्वर उनकी सुधि लेता था। ये इसलिए था कि वे उस असुविधा को अनुभव करें जो उनके पूर्वजों ने झोपड़ियों में रहते समय अनुभव की थी। ये उनके लिए उन 40 वर्षों की स्मृति थी। इस पर्व का एक और उद्देश्य था कि वे इस सत्य को सदा याद रखें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विश्वास योग्य है। वो उन्हें उस देश में ले आया जिसकी प्रतिज्ञा उनके पिता इब्राहिम से की थी, और उसने उन्हें उसका अधिकार भी दे दिया। इस प्रकार झोपड़ियों का पर्व बहुउद्देश्य था। जंगल में तुम्हारे पूर्वजों की परमेश्वर ने सुधि ली, और परमेश्वर प्रतिज्ञा पूर्ति में विश्वास योग्य है। मसीह के समय में इसी पर्व को मनाते समय याजकों का समूह मंदिर के कंगूरे से शीलो के जल कुंड तक जलूस निकालकर जाता था। वहां से पुजारी पात्रों में पानी भरकर मंदिर के कंगूरे तक लाता था। अन्य याजक स्तुति गान करते हुए उसके साथ चलते थे, और कंगूरे पर लोग खड़े हुए आराधना करते थे, और याजक कंगूरे के फर्श पर पानी उंडेलता था। ये उनके लिए एक यादगार थी कि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के लिए चट्टान से पानी निकाला था। पुजारी कंगूरे के फर्श पर पानी उंडेलता था तब वहां उपस्थित लोग आराधना करते और गीत गाते थे। 8 दिन के इस पर्व में वे 7 दिन तक ऐसा करते थे। 8वें दिन जलूस शीलो के जल को नहीं जाता था, और न ही कंगूरे पर पानी डाला जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि वे परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को याद करें जिसकी पूर्ति में परमेश्वर उन्हें उस देश में ले आया था जहां पानी की कमी नहीं थी, और उन्हें अब परमेश्वर के चमत्कारी पानी की आवश्यकता नहीं थी जो उसने चट्टान से बहाया था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ अपनी वाचा निभाई थी। वो इसराइल के वंशजों को प्रतिज्ञा के देश में ले आया था। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इस पर्व के 8वें दिन यरूशलेम में था, और उसने मंदिर में खड़े होकर पुकारा। यूहन्ना 7:37। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यही वो दिन था जिस दिन वे जलूस निकालकर शीलो के जल कुंड तक नहीं जाते थे। 8वां दिन यीशु घोषणा कर रहा था कि वो जीवन का जल प्रवाहित करने वाली चट्टान है। आज भी बहुत से रूढ़िवादी यहूदी अपने घरों के पीछे छोटी छोटी झोपड़ी बनाते हैं, और इस पर्व के 7 दिन वे घर से बाहर इन झोपड़ियों में रहते हैं। बहुत वर्षों पहले झोपड़ियों के पर्व पर हम यरूशलेम और हाइफा में थे। वहां घरों के साथ हमने छोटे मंडप देखे जो लोगों ने बनाए थे। वे लोग अपने घरों से निकलकर इन छोटी छोटी असुविधाजनक झोपड़ियों में 7 दिन तक रहते हैं। आज भी ऐसा करते हैं जो पूरे पर्व के समय इस बिना आराम छोटे मंडपों में रहते हैं। यहूदियों के 3 मुख्य पर्व होते हैं, फसा का पर्व, पेंतिकुस्त का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। इन 3ों पर्वों में पुरुषों को यरूशलेम आकर स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख लाना होता है। वे परमेश्वर के सम्मुख इस भाव में खड़े होते हैं, हम तेरे लोग यहां हैं परमेश्वर। इस दौरान बड़ा आनंद और पर्व मनाया जाता है। 2 पर्व पूरे हो चुके हैं क्योंकि उनकी भविष्यवाणी की गई थी। वे सब भविष्य में होने वाली बातों की ओर संकेत करते थे। फसा का पर्व जिसमें मेमना बलि किया जाता था, वो उस भविष्य की ओर संकेत करता था जिसमें परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र की बलि देगा कि हमें जीवन दान मिले, अर्थात यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रकार फसा के पर्व के समय यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना महत्वपूर्ण था कि इस पर्व द्वारा भविष्य का संकेत पूरा हो। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पेंतिकोस्त का पर्व पहले फल का उत्सव था। फसा के पर्व के 50 दिन बाद वे अपने खेतों के कोनों से फसल काटकर पूले बांधते थे और उन्हें परमेश्वर को चढ़ाते थे, जिसका अर्थ होता था, प्रभु ये हमारी उस फसल का प्रथम फल है जो तूने इस वर्ष दान दी है। उनके देश में अन्न की फसल जून महीने में पककर तैयार होती थी। इस प्रकार वे जून के महीने में पेंतिकुस्त के पर्व पर अपनी फसल का प्रथम फल परमेश्वर को अर्पित करते थे। अब ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंतिकुस्त के पर्व के समय जब शिष्य यरूशलेम में इकट्ठे थे, तब अचानक ही स्वर्ग से ऐसी आवाज हुई जैसे बड़ी आंधी उठी हो। वो कक्ष जहां वो बैठे थे इस आवाज से गूंज उठा और वे सब पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाएं बोलने लगे जो पवित्र आत्मा ने उन्हें दी थी। ये घटना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये पेंतिकोस्त के पर्व पर हुई, दूसरा 3,000 जन कलीसिया मसीह की दुल्हन में जुड़ गए। ये कलीसिया के प्रथम फल थे जो पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर को अर्पित किए गए। उसी दिन जिस दिन इसराइल वंशी अपनी अच्छी फसल का प्रथम फल परमेश्वर को चढ़ा रहे थे। इस प्रकार ये पर्व मसीह की दुल्हन के प्रथम फल की ओर संकेत कर रहा था, उस फसल का जो परमेश्वर एक दिन काटेगा। अब झोपड़ियों का पर्व। ये पर्व इसराइल वंशियों की 40 वर्षीय जंगल यात्रा और परमेश्वर की वाचा पूर्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे प्रतिज्ञा के देश में आ चुके हैं और उस उत्तम देश में निवास कर रहे हैं। पृथ्वी आज जंगल के अनुभव से निकल रही है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। पत्रस कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। अंतिम दिनों में धर्म की हंसी उड़ाने वाले आएंगे जो कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से हमारे पूर्वज सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है। पत्रस आगे कहता है, ऐसा नहीं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम जानबूझकर भूल गए। जल प्रलय इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, और तुमसे ये बात भी छिपी है कि प्रभु के यहां एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर है और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर है। फिर वो कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा की ओर इशारा करता है जो विश्वास योग्य है। उसके आने में देर का कारण ये बताता है। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस समय पृथ्वी जंगल के अनुभव से गुजर रही है, लेकिन हम लोग शीघ्र ही प्रतिज्ञा किए हुए प्रतापी देश परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रतिज्ञा का युग ऐसा निश्चय ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यीशु फिर से आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा, तब वो समय झोपड़ियों के पर्व का समय होगा। इस प्रकार यहूदियों का 3रा मुख्य पर्व संपन्न होगा। मेरा अनुमान ये है कि प्रभु यीशु का आगमन अक्टूबर महीने में होगा, परंतु आप ये ना कहें मसीह यीशु आने वाले अक्टूबर में आ रहा है। मेरा कहने का अर्थ है, जब मसीह यीशु आएगा और जैतून पर्वत पर अपना पाँव रखेगा, तब वो समय अक्टूबर के महीने का होगा। मैं जानता हूं कि अभी अंतिम सात अर्थात भविष्यवाणी के अनुसार मसीह के आगमन के पूर्व का सात वर्षीय सप्ताह अभी आरंभ नहीं हुआ है। ये सात वर्ष का समय इसराइल इतिहास में होना बाकी है। मुझे विश्वास है कि ये अक्टूबर महीने में होगा, जिससे कि यहूदियों का तीसरा मुख्य पर्व पूरा हो सके। दो पर्व तो पूरे हो गए हैं, परंतु तीसरा अभी पूरा होना बाकी है। अतः जंगल के अनुभव से गुजरना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश करना अपना एक महत्व रखता है। परमेश्वर की महिमामय प्रतिज्ञाएं। उन्होंने व्यवस्था में झोपड़ियों के पर्व के आदेश को पाया। वे इसके बारे में नहीं जानते थे, अतः उन्होंने झोपड़ियां बनाई और घर छोड़कर उसमें चले गए। अध्याय 8 पद 18। यों वे सात दिन तक पर्व को मनाते रहे और आठवें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। झोपड़ियों का पर्व आठ दिन चलता था। सात दिन तक पर्व को मनाते थे और फिर महासभा होती थी। इसी महासभा के दिन यीशु ने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए।